ज्योति भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर है और मेरे पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे नहीं पता कि नई बहू का स्वागत कैसे किया जाता है, लेकिन फिल्मों में ये सीन जरूर देखा था। इसके अलावा कुछ और करना है तो प्लीज मुझे बता दो। कीर्ति मुस्कुराते हुए नामे सर हिलाती है। वो अपने पैर से कलश को अंदर की तरफ गिराती है और फिर घर में प्रवेश करती है। कीर्ति घर में आती है और घर को देखने लगती है। रजत अकेला रहता था और यहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी बैचलर का घर है, बल्कि रजत को हर चीज परफेक्ट ही पसंद है। आर्मी में होने की वजह से रजत में ये क्वालिटी आई थी। वो हर चीज को परफेक्ट रखना ही पसंद करता था। किसी भी चीज में गंदगी और खराबी उसे इरिटेट करती थी, लेकिन कीर्ति उसके बिल्कुल पलट थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी, इसीलिए चीज मैनेज करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसके कपड़े हमेशा कुर्सी पर पड़े रहते थे, किताबें कभी भी सेट नहीं कहती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी कभी सेट नहीं कहती थी। तो उसके ऊपर सिंगल की छोटी राजकुमारी होने का भार था, इसीलिए उसे सही कपड़े पहनकर बाहर निकलना पड़ता था, वरना उसका बस चले तो वो घर से बाहर भी पजामे में ही निकल जाए। रजत दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी मोहल्ले की औरतें रजत को देखकर कहती हैं, रजत ये क्या किया तुमने? राजकुमारी कीर्ति से शादी की है, पर ऐसे अचानक तुम दोनों शादी क्यों कर ली है? मोहल्ले वाले के सवाल कीर्ति को भी सुनाई दे रहे थे और वो हैरानी से रजत को देखने लग जाती है। रजत उस औरत को देखकर कहता है, आंटी वो हमें बस जल्दबाजी में शादी करनी ही पड़ी, पर्सनल प्रॉब्लम है। तभी एक दूसरी औरत कहती है, अरे जब शादी कर ही ली है तो हमें अपनी बहू से मिलने तो दो, ऐसे दरवाजा बंद कर रहे हो। माना यहाँ की राजकुमारी है, लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी है ना, क्या हम तुम्हारी बीवी से मिलने नहीं आ सकते हैं? रजत कहता है, नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कीर्ति अभी अभी आई है ना और वो थक भी गई है, थोड़ी देर आराम कर लेगी तो ठीक रहेगा, आप लोग शाम को आइए ना मिलने के लिए। सभी औरतें हाँ में सिर हिलाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। रजत भी दरवाजा बंद करता है और कीर्ति के पास आकर कहता है, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, कमरा उस तरफ है। कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है और कमरे की तरफ पड़ जाती है। रजत गहरी सांस छोड़ता है और किचन में जाकर देखता है। क्योंकि रजत यहाँ नहीं रहता था, इसलिए उसके किचन में कुछ भी नहीं था जो वो पका सके। अपने सर को खुजाते हुए रजत कुछ सोचने लगता है और फिर जल्दी से उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद रजत दो प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखता है कि तभी दरवाजा खुलता है और कीर्ति बाहर आती है। रजत कीर्ति को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि कीर्ति ने इस वक्त रजत की शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। वो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आ रही थी और रजत को देखते हुए वो थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है। वो अपना चेहरा नीचे करती है और धीरे से कहती है, वो सॉरी मुझे आपके कपड़े पहनने पड़े, दरअसल मेरे पास कपड़े नहीं है। रजत आंखें बड़ी किए हुए कीर्ति को ही देख रहा था कि उसने रजत के कपड़े पहने हैं, बल्कि वो इसलिए देख रहा था कि रजत के कपड़ों में कीर्ति बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी। रजत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन्हें पहन सकती हो, इट्स ओके, और डोंट वरी मैं जल्दी कपड़े अरेंज करवा दूंगा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, आ जाओ मैंने कुछ बनाया है। कीर्ति टॉवल को वहीं एक कुर्सी पर रख देती है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ जग जाता है रजत का मिस्टर परफेक्ट वाला रूप। कीर्ति ने तो गीले टॉवल को यूं ही कुर्सी पर फेंक दिया था, पर रजत के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो तुरंत उस कुर्सी की तरफ बढ़ा और गीला टॉवल उठाकर उसने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। रजत जब डाइनिंग टेबल के पास आता है तो देखता है कीर्ति अभी तक खड़ी है और आंखें बड़ी किए हुए उस प्लेट को ही देख रही है। रजत उससे कहता है, क्या हुआ? कीर्ति आंखें फाड़े रजत से कहती है, आपने मैगी बनाई है? रजत थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। वो अपने बालों को अपनी उंगलियों से खुजाते हुए कहता है, एक्चुअली मैं रहता नहीं हूँ तो घर पर ग्रोसरी का सामान नहीं है, तभी मुझे याद आया कि अपने पैकिंग के सामान में मैगी लेकर आया था, एमरजेंसी में काम आती है ना, तो फिलहाल के लिए मैंने मैगी ही बना दी है, पर तुम फिक्र मत करो, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे अगर तुम्हें मैगी नहीं खानी है तो। लेकिन कीर्ति मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं खाना बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मैगी मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खाती थी, इस वजह से एक बार मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी, उसके बाद से पृथ्वी भाई ने मेरा मैगी खाना बंद करवा दिया था। इतने समय बाद अपने सामने मैगी देखा तो खुशी के मारे आपसे ऐसे सवाल कर बैठी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैगी खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। कीर्ति जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाती है और चम्मच से भर भर कर मैगी खाने लगती है। उसे इस तरीके से खाता देखकर रजत हंसने लगता है। वो आराम से कुर्सी पर बैठता है और एक ग्लास में पानी डालकर कीर्ति के सामने कर देता है। शाम का वक्त, महल। कीर्ति के जाने के बाद आस्तिक बहुत ज्यादा उदास हो गया था। वो सुबह से ही स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। अरुणिमा एक नज़र स्टडी रूम की तरफ देखती है, लेकिन फिर उसने आस्तिक उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। वो हॉल में बने सोफे पर बैठी हुई थी और अपना प्रोजेक्ट फाइल कलेक्ट कर रही थी। तभी जानवी वहाँ आती है और अरुणिमा की मदद करने लगती है। 10 दिन बाद अरुणिमा के एग्जाम थे और जानवी उसकी बहुत मदद कर रही थी। आस्तिक स्टडी रूम का दरवाजा खोलता है और बाहर आता है कि तभी उसकी नज़र हाल में बैठी अरुणिमा और जानवी पर जाती है, जो हंसते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और साथ ही अरुणिमा के प्रोजेक्ट फाइल पर काम भी कर रही थी। ये देखकर आस्तिक के चेहरे पर कुछ भाव आ जाते हैं और वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद आस्तिक सीधे एग्जिट की तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं था कि अरुणिमा को उसके जाने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसने ये जताया कि वो आस्तिक के यहाँ रहने से या यहाँ से जाने से इफेक्ट होती नहीं होती है। उसने तो आस्तिक की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। आस्तिक घर से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। आज उसे अकेले रहना था, उसे कोई साथी नहीं चाहिए था और ना ही उसे किसी के साथ की जरूरत थी। आज उसे अपने आसपास सिर्फ अकेलापन चाहिए था। शायद यह अकेलापन अब उसे सारी जिंदगी झेलना होगा। आस्तिक अपने ऑफिस में पहुंचता है। इस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था। आस्तिक अकेला ही अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रहा था, कितना अकेला हो गया है वो। उसके घर में सब कोई है, लेकिन फिर भी कोई उसका अपना नहीं है। और अरुणिमा, उसे तो आस्तिक ने खुद अपने से दूर किया है। या फिर यूं कहें कि अरुणिमा अब खुद आस्तिक के पास नहीं आना चाहती। उसके बाद आस्तिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद शायद आस्तिक सारी जिंदगी पछताने वाला था, लेकिन उसने इस फैसले को लेने का तय कर लिया था। उसने अपना फोन उठाया और किसी से कुछ करने के लिए कहा। अब देखना यह था कि आस्तिक के इस फैसले का अंजाम आस्तिक खुद कैसे भोगता है।